हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए अपने मन में कहा, अगर इन्हें पता होता तो ये मेरे पास रहते, मेरी केयर करते। ये सोचने भर से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी कि वेदांत उसकी केयर करता। वहीं उसके चेहरे पर आते एक्सप्रेशन को देखकर वेदांत कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं समझ आया कि विहा को उसकी बात का बुरा लगा है या अच्छा, उसको समझ आया या नहीं। वेदांत ने फिर से उसके सर को सहलाते हुए कहा, बेटा समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बार विहा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ आ रहा है, आगे से मैं आपको बता दूंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, गुड गर्ल, अब सो जाओ। निमानी हाउस के डाइनिंग एरिया में आज रोहान माधवी के पास बैठकर डिनर कर रहा था। निवेदिता उसे डिनर पर देखकर खुश थी, तो वहीं अनाही को उसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकत पर अब भी हल्की नाराजगी थी। वो टेढ़ी नजरों से रोहान को देख रही थी, लेकिन रोहान की नजरें एक बार भी उसकी तरफ नहीं उठी थीं। उसका कारण अनाही को नहीं पता था, लेकिन अनाही को सबसे अजीब चीज लग रही थी कि वो उसके साथ साथ निवेदिता को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, यहाँ तक कि वो निवेदिता से तो नजर भी नहीं मिला रहा है। डिनर के बाद सब अपने कमरों में जा चुके थे। अनाही भी सारे बर्तन समेटकर सबके बाद अपने कमरे में गई। कमरे में रोहान बैठा था, उसके दोनों हाथ आपस में उलझे हुए थे, उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसे थोड़ी देर पहले की अपनी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, शायद उसने जो थोड़ी सी वाइन पी थी उसका कुछ नशा था, तो कुछ डॉक्टर रश्मि की बातें उस पर हावी हो रही थी, इस वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। लेकिन फिलहाल उसका पूरा नशा उड़ चुका था और उसने जो जो किया था उसे बार बार याद आ रहा था। वो अपने होठों को काटते हुए बस यही सोच रहा था कि वो अनाही से क्या बात करे। तभी उसे अनाही के आने की आहट हुई। उसने झट से सर उठाकर अनाही की तरफ देखा, जो उसे बिना देखे ही तेज कदमों से बालकनी की तरफ जा रही थी। रोहान ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम जी मुझे आपसे बात करनी थी। अनाही ने मुड़कर फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, यही बताना है आपको कि मैं आपकी ताई जी को गलत ना बोलूं, उनके खिलाफ आप मेरे मुंह से शब्द नहीं सुन सकते। दूसरा, मैं आपके फैमिली मैटर में टांग ना अड़ाऊं और खुद को थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट ना समझूं। और क्या क्या कहा था आपने? एक स्ट्रेंजर हूँ तो आपकी प्राइवेट प्लेस में नहीं आ सकती, मुझे सब चीज याद है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ इसकी एक डायरी बना लेती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं एक भी चीज मिस नहीं करूँगी। डोंट वरी, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। अनाही नॉनस्टॉप ये सब कुछ बोल चुकी थी, जिसके बाद वो तेजी से बालकनी में चली गई। उसने ग्लास डोर को बाहर की तरफ से बंद किया और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने कंफर्टर को अपने कंधे पर डाला और बालकनी से बाहर देखने लगी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और काफी खूबसूरत नजारा था। उसने चमकते चांद को देखकर अपने मन में कहा, शादी के बाद लड़कियां कितनी नखरे करती हैं अपने पति के सामने, और एक मेरे पति देव हैं जिनके खुद के नखरे नहीं खत्म होते। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। इतना तो मैं विवाह से भी तंग नहीं हुई, उसमें तो रोहान जी से भी ज्यादा बचपन है। कुछ सोचकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा रखते हुए धीरे से बुदबुदाया, शायद ये मेरी एक्सपेक्टेशंस का नतीजा है। अगर मैं सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगी तो कैसे मुझे हर्ट हो जाएगा। अब से मैं यही करूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे पहले रहती थी वैसे ही अब रह लूंगी। रात के 10 बजे और 10 से 11 भी, लेकिन रोहान को नींद नहीं आई। अब तो उसका इकलौता सहारा शुगर भी सो चुकी थी। रोहान उसके पास बैठकर थैंक यू बोल रहा था। कुछ देर पहले उसी ने रोहान को अपने होश में लाया था जब वो अनाही का गला दबा रहा था। अचानक ही बाहर तेज बिजली कड़कने की आवाज आई, जिसके साथ ही रिमझिम बारिश होने लगी और साथ ही सर्द हवाएं चलने लगी। अनाही जो हल्की नींद में थी उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसने जल्दी से खुद को कंफर्टर से कवर किया और फिर मुंह फुलाकर बोली, अरे बरसना है तो बरसो, यूं आवाजें मत करो। अचानक ही ठंडी हवा और उसके साथ कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर आ लगीं। अनाही ने कंफर्टर से चेहरा ढकते हुए कहा, तुम भी कर लो मुझ पर गुस्सा, बस यही बाकी था। अंदर इस बिजली के कड़कने की आवाज़ से रुहान की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ पल और रुकने के बाद उसके सब्र का बांध भी टूट ही गया। वो उठा और तेज कदमों से ग्लास डोर के पास जाकर उस पर नॉक करने लगा। अनाही ने एक दो बार इग्नोर किया, लेकिन फिर झल्लाकर उठकर बैठते हुए बोली, क्या चाहिए रुहान जी आपको? रुहान ने बिना जवाब दिए बस उस दरवाजे को नॉक करना जारी रखा। अनाही उठी और एक झटके से दरवाजा खोलकर तेज आवाज में बोली, मुझे आम लड़कियों की तरह बिजली कड़कने का डर नहीं लगता है, आप आराम से सो जाइए। वो ये बोलकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि रुहान ने अचानक उसकी कमर पकड़ते हुए उसे कमरे के अंदर खींच लिया। अनाही ने गिरने के डर से झट से अपने दोनों हाथों को रुहान के सीने पर रख दिया, जिसके साथ ही उसे रुहान के फिल्म स्पीड से धड़कते दिल का एहसास हुआ। अनाही और रुहान एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। रुहान ने उसे अपनी ओर करीब किया और अगले ही पल ग्लास डोर को बंद कर दिया। अनाही को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। रुहान ने उसकी पीठ ग्लास डोर से लगाते हुए अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब करके कहा, मैडम जी, आपको नहीं लगता आप आज कुछ ज्यादा बोल रही हैं? हाँ, आज पूरे दिन में अनाही अपनी पर्सनालिटी के विपरीत बहुत कुछ बोल गई थी, लेकिन फिलहाल रुहान के करीबी से उसकी बोलती बंद थी। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। रुहान ने उसके होंठों को एक टक देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? अनाही ने अपना चेहरा घुमाकर सांस लेने की कोशिश की और फिर आंखें भींचते हुए बोली, आप दूर हटेंगे पहले, मुझे सांस नहीं आ रही है, बहुत अजीब लग रहा है। रुहान ने कुछ पल उसकी गर्दन पर तेजी से चलती नब्ज को देखा और फिर उससे दूर होते हुए आंखें छोटी करके बोला, अगर मैं आपके सामने आपके मम्मी पापा के बारे में बुरा बोलूंगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? अनाही ने पहले सांस ली और फिर मुड़कर रुहान की तरफ देखकर बोली, मैं आपको सफाई पेश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे खुद पर वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं है जो मेरे सच बोलने पर मुझ पर उतारा जाए, आप उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब मुझे सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के ऑफिस भी जाना है, आई थिंक आपको भी काम होगा तो आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। इतना बोलकर अनाही दरवाजा खोलने वाली थी कि रुहान ने झट से उसकी कलाई थाम ली। अनाही को इसकी उम्मीद नहीं थी, उसने हैरानी से रुहान को मुड़कर देखा। रुहान ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी एंड आप आज बाहर नहीं सोएंगी। अनाही ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, क्यों? सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, जब चाहा तब बाहर सोने को बोल दिया और जब चाहा तब अंदर, मैं आपको कोई शोपीस नजर आ रही हूँ। इतना बोलकर उसने झट से अपना हाथ छुड़ाया और अगले ही पल तेजी से बालकनी में चली गई। रुहान बस अपने खाली हाथ को देखते रह गया। उसने अनाही के जाते ही एक मुक्का बनाकर ग्लास डोर पर दे मारा, लेकिन उस डोर को कोई फर्क नहीं पड़ा। मन मार कर रुहान वापस बेड पर आकर लेट गया, लेकिन उसकी नन नजरें तब तक अनाही को ताकती रहीं जब तक उसकी आंखों में नींद ना घुल गई। अगली सुबह रुहान की नींद किसी के बार बार छींकने पर खुली।
उसने आंखें खोलते हुए देखा तो अनाही अपने बाल बना रही थी और साथ में हर एक मिनट के गैप से उसे छींकें आ रही थी।